परिशिष्ट 17। जापान साम्यवादी दल, जापान कम्युनिस्ट पार्टी। पृष्ठ संख्या 200। जापान साम्यवादी दल की नींव 15 जुलाई 1922 को रखी गई थी और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्य विरोधी दल बना। इस दल की नींव कोमिंतर्न की एक शाखा के रूप में साम्यवादी कार्यकर्ताओं जिनमें यामाकावा हितोशी, आरा हाता कानसोन, साकाय तोशी ही को तथा तोकुदा क्यूइची शामिल थे ने रखी थी। आरंभ में इस दल की ओर नोसाका सांजो जैसे समाजवादी, सानो मनाबू, इचिकावा शोइची तथा शिगा योशियो जैसे युवा बुद्धिजीवी और वातानाबे मसानोसुके जैसे मजदूर आकर्षित हुए। इस दल को कानूनी स्वीकृति प्राप्त होने तक सरकार द्वारा अक्सर इसका दमन किया जाता था, क्योंकि सरकार इसकी सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र के नीति के खिलाफ थी। 1920 और 1930 के दशकों में इस दल ने लाल ध्वज जैसे समाचार पत्रों तथा विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा अपने स्वभाव को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। आरंभ में यह कई छात्र संगठनों पर अपना प्रभाव जमाने में सफल हुए। इस दल ने जापान मजदूर संघ में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन संघ के रूढ़िवादी सदस्यों ने विभाजन करवा दिया और इसके फलस्वरूप जापान मजदूर संघ की वामपंथी परिषद ने जन्म लिया। इस दल ने मजदूर किसान दल के जरिए कानूनी तौर पर राजनीति में भी घुसने का प्रयास किया और 1924 के चुनावों में अपने 2 सदस्यों को डायट के लिए जितवाने में भी सफल हुए। 15 मार्च 1928 एवं 16 अप्रैल 1929 की घटनाओं के बाद सरकार ने जापान साम्यवादी दल के अधिकतर सदस्यों को जेल में डाल दिया और दल की समर्थक संस्थाओं को भंग कर दिया। जापान साम्यवादी दल के मुख्य नेताओं पर मुकदमा चलाए जाने के बाद 1932 में उन्हें सजाएं दी गई। अगले वर्ष सातो जैसे मुख्य नेताओं द्वारा दल का परित्याग और दल के अध्यक्ष हाकामादा सोतोमी की 1935 में गिरफ्तारी के बाद इस दल की गतिविधियां समाप्त हो गईं, लेकिन मार्क्सवाद को बुद्धिजीवी वर्ग का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। इस काल की मुख्य बुद्धिजीवी घटना आधुनिक जापानी पूंजीवाद पर भारी बहस थी। दल के युद्ध पूर्व मुख्य कार्यक्रम नेतृत्व में परिवर्तन एवं विश्व घटनाओं का प्रभाव दर्शाते थे। आरंभ में इस दल पर यामाकावा हितोशी जैसे बुद्धिजीवियों का प्रभाव था, जिन्होंने जनसंपर्क पर जोर दिया। इस नीति को अपनाते हुए यामाकावा ने जापान साम्यवादी दल को भंग किए जाने की मांग की, ताकि कानूनी मान्यता प्राप्त धन आधारित संयुक्त मोर्चा कायम किया जा सके। वैसे 1923 में जापान साम्यवादी दल को भंग भी कर दिया गया, हालांकि औपचारिक रूप से यह 1924 में किया गया। 1924 में फुकुमोतो काजुओ नाम का एक युवा साम्यवादी जर्मनी और फ्रांस में मार्क्सवाद के 2 वर्ष के गहरे अध्ययन के बाद लौटा। उसने यामाकावा के विचारों का जोरदार खंडन किया। काजुओ ने 1937 में इस दल के पुनः स्थापन में भाग लिया। जुलाई 1927 में कोमिंतर्न ने उभर रहे जापानी साम्यवादी आंदोलन की गतिविधियों एवं विचारधारा को दिशा देने का ऐलान किया। कोमिंतर्न ने यामाकावा के विचारों को अवसरवादी तथा फुकुमोतो के विचारों को सांप्रदायिक कहकर उनका खंडन किया। जापानी सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए दमन तथा 1929 के में आरंभ महान आर्थिक संकट के फलस्वरूप दल ने 1931 में नई नीति बनाई, जिसके तहत 2 चरणीय क्रांति की बजाय सीधी सामाजिक क्रांति लाने की बात कही गई। ऐसी नीति ने दल के अंदर झगड़ों एवं विवादों को जन्म दिया और कोमिंतर्न ने भी ऐसी नीति को स्वीकृति नहीं दी। लेकिन 1932 में कोमिंतर्न ने दो चरणीय क्रांति की बात कही और घोषित किया कि सम्राट प्रणाली से सैन्य सामंत साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलता है। जापान साम्यवादी दल को कानूनी तौर पर 1 महीना पहले जेल से रिहा किए गए पुराने साम्यवादियों ने 4 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया। बाद में नोसाका सांजो जैसे नेता जो चीन में रह रहे थे भी वापस आकर दल के लिए कार्य करने लगे। अब दल ने शांति प्रिय, नरमपंथी तथा बाह्य प्रभाव से मुक्त होने की अपनी तस्वीर प्रस्तुत की। 1946 के चुनाव में इस दल ने प्रतिनिधि सभा के लिए 5 सीटें जीती। इसके बाद इस दल का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और 1949 के चुनाव में उसने 35 सीटें जीती। लेकिन 1950 के दशक में शीत युद्ध के वातावरण में जापान साम्यवादी दल की सफलता विफल हो गई। जनवरी 1950 में दल ने कोमिंतर्न की इस आलोचना को स्वीकार किया कि वह आधिपत्य का पर्याप्त विरोध नहीं कर रहा था। आधिपत्य अधिकारी वर्ग ने 6 से 7 जून को जापान साम्यवादी दल के मुख्य नेताओं को राजनीति से निकाल दिया, क्योंकि उनके अनुसार वे आधिपत्य को खतरे में डाल रहे थे। कुछ दिनों बाद सरकारी एवं निजी उद्योगों में काम करने वाले उन सभी लोगों को निलंबित कर दिया गया जिन पर साम्यवादियों के साथ सहानुभूति रखने का शक था। आधिपत्य अधिकारी वर्ग द्वारा उठाए गए इस कदम के फलस्वरूप संगठित श्रमिक संघों में जापान साम्यवादी दल के प्रभाव का पतन हो गया। दल के नेताओं ने इसका जवाब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसक क्रांति की नीति अपना कर दिया। उनमें से कई नेता भूमिगत हो गए। इसके कारण दल में अंदरूनी झगड़े बढ़ गए। दल द्वारा किए गए कई हिंसक कार्यों के कारण जो थोड़ा बहुत जन समर्थन इसे मिल रहा था वह भी अब समाप्त हो गया। 1952 के चुनाव में दल प्रतिनिधि सभा की सभी 35 सीटें खो बैठा। 1950 के दशक के मध्य से दल ने अपने नीतियों को धीरे धीरे नरम बनाया और दल नेता फिर से दिखाई पड़ने लगे। दल ने फिर अपनी दशा में सुधार करने में सफलता प्राप्त की। उदाहरणतया 1969 और 1979 के चुनावों में दल ने क्रमशः 14 और 41 सीटें प्रतिनिधि सभा के लिए जीती। जब इस दल ने एक स्वतंत्र एवं राष्ट्रीय रुख को अपने नीति का मुख्य अंग बना लिया है, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता कुछ हद तक बनी हुई है।